पिछली बार हमने अय्यूब की पुस्तक से कुछ बातों का हमने अध्ययन किया था। साथ मिलकर हमने अय्यूब के जीवन को देखा था। भजन संहिता से पहले अय्यूब की पुस्तक है और परिचय में मैंने थोड़ा सा आपको बताया था कि अय्यूब का जो काल है वो लगभग वही काल है जो अब्राहम, इजाक, याकूब का है। और हमने इस बात को देखा था, मैंने स्मरण दिलाया था कि किस रीति से उत्पत्ति जब 50 अध्याय में हम समाप्त करते हैं और निर्गमन की पुस्तक को हम शुरू करते हैं तो लगभग वही पीरियड है जबकि अय्यूब उस समय वास करता था, उस समय रहता था। और तब मैंने एक बात आपको बताई थी, कैसे हम जान सकते हैं कि अय्यूब, यद्यपि भजन संहिता से पहले लिखी गई पुस्तक यहाँ पर रखी गई है बाइबल में, लेकिन वो उस समय था। तो हमने दो बातें देखी थी, पहले अब्राहम के कारण, अब्राहम और उस समय के लोग की धन संपत्ति के कारण। दूसरी चीज हमने देखी थी कि निर्गमन में तीसरे अध्याय तक परमेश्वर ने अपने आप को पहले एक विशेष नाम से अपने आप को प्रकट किया, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, और उसने अब्राहम को उसी नाम से अपने आप को प्रकट किया, इजाक को अपने इसी नाम से प्रकट किया और अय्यूब भी बार बार इसी नाम से परमेश्वर को संबोधित करता है। तो हमने इस बात को देखा था, मैं स्मरण दिलाने के लिए कहना चाह रहा हूं। और हम जानते हैं, और तब हमने इस बात को देखा था कि निर्गमन में परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कहता है मूसा से, मैंने तेरे पूर्वज इब्राहिम, इजाक, याकूब को सर्वशक्तिमान नाम से प्रकट किया, लेकिन अब मैं यहोवा हूं। और तब से मूसा के द्वारा फिर यहोवा नाम आगे बढ़ा। तो हमने उस काल को देखा, अय्यूब बहुत धनी था लेकिन परमेश्वर का भय मानता था, और परमेश्वर का भय मानते परमेश्वर के हृदय में भी उसके लिए बहुत अधिक स्थान था। परमेश्वर बार बार उसके बारे में साक्षी देता है। यहां तक इजेकेल को आप पढ़ेंगे तो इजेकेल पुस्तक में भी हम अय्यूब के विश्वास की साक्षी देते हैं। अय्यूब का जीवन कुछ इस तरह का है। पिछली बार जो हम विचार कर रहे थे, हम देख रहे थे अय्यूब ने अपने संघर्ष के समय में, अपने परख के समय में अय्यूब ने किस प्रकार से परमेश्वर को देखा और अय्यूब क्या कह रहा है, उसका विश्वास कैसा है, कितनी मजबूती के साथ वो एक बात को कहता है। अय्यूब उसका 23 अध्याय उसका 10 पद, अय्यूब बुक ऑफ जोब चैप्टर 23 वर्स 10, वो ये कहता है, परंतु वो मेरा चाल चलन जानता है, अय्यूब कह रहा है परमेश्वर के लिए, परंतु वो मेरा चाल चलन जानता है, जब वो मुझे परख चुकेगा, जब वो मुझे परख चुकेगा मैं सोने के समान निकलूंगा। हिज कॉन्फिडेंस, उसका भरोसा है। लेकिन अय्यूब के जीवन में इस बात को भी हम देखते हैं कि कई बार उसके जीवन में उथल पुथल आ रहा, निराशा आ रही, और ऐसा लग रहा है शायद अय्यूब अपने जन्म का धिक्कार कर रहा है, शायद अय्यूब परमेश्वर के बारे में कुछ उसका इनकार कर रहा है, कुछ ऐसी बात। मैं सोच रहा था कैसे हम इसको समझ सकते हैं, कैसे हम इसको समझ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर बार बार अय्यूब की प्रशंसा करता और अंत तक में भी, है ना, कैसे उसको समझ सकते। छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। मान लीजिए एक छोटा आपका बेटा है, छोटा बेटा 4-5 साल का है और आप दूर खड़े हुए हैं और वो बेटा ऐसे यहां पर खड़ा हुआ है और एक डॉगी है सामने और डॉगी भौंक रहा है और ये बच्चा डर रहा है और पापा की ओर देख रहा है कि पापा मुझे बचा ले, मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। लेकिन पापा उसको जानता है कि वो कि मैं उसको किस तरह से बचाऊंगा, मैं उसको इस तरह उस ऐसी स्थिति में नहीं जाने दूंगा कि डॉगी उसके ऊपर झपट जाए या उसको काट ले। लेकिन डॉगी घुर्रा रहा, हो कर रहा है, भौं भौं कर रहा है और ये बालक जो है कांप रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा, पापा 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 चिल्ला रहा है। और खैर जैसे ही डॉगी थोड़ा सा आगे बढ़ता है, पापा जाते हैं उसको उठा लेते हैं बच्चे को, और जैसे ही पापा को पापा बच्चे उठा लेते हैं, बच्चा पकड़ता है पापा को, पापा मैं आपसे नहीं बोलूंगा, मैं आपसे बात नहीं करूंगा, आप अच्छे पापा नहीं है, आप बहुत खराब पापा है। क्यों? क्योंकि जो डॉगी का रिएक्शन हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा जो है पापा से कह रहा है मैं आपसे नाराज हूं, क्रोधित हूं, मैं आप अच्छे नहीं, वो नहीं, लेकिन एक प्रतिक्रिया उसकी ऐसी हो रही है क्योंकि जो उसके ऊपर सामने आ रहा है उसको देखे। पापा का रिलेशनशिप खराब नहीं है बेटे के साथ, बेटा जानता है, और बाद में वो गले पापा के चिपट जाता है। आपने कई बार इस तरह से देखा होगा, बहुत सारी ऐसे। सो मैं इसको कल्पना कर रहा था कि किस प्रकार से ये अय्यूब के जीवन में हो रहा है, क्योंकि शैतान उसको घुरा रहा है, शैतान उसके ऊपर बार बार आक्रमण करने के प्रयास कर रहा है। हम जान रहे हैं कि किस प्रकार के वो अनुभव में जा रहा है, किस प्रकार से वो यहां तक कहता है अय्यूब 7 अध्याय उसके 5 पद में, मेरी देह कीड़ों और मिट्टी की परत से ढकी हुई है। हम जानते हैं कैसे उसकी देह उसका शरीर हो रहा था। 19 अध्याय के 20वें पद कहता है, मेरी चमड़ी और मांस मेरी हड्डी से चिपक गई है। 30 अध्याय के 30 पद में कहता है, मेरी त्वचा काली पड़ करके गिरती जाती है। उसका शरीर उस व्याधि के कारण, उस बीमारी के कारण जो उसके ऊपर आने के लिए परमेश्वर ने अनुमति दे दी थी, उसके कारण ऐसा हो रहा था। अब सोचिए किस दशा में उस अय्यूब का जीवन है और ऐसे संघर्ष में, लेकिन फिर भी अय्यूब किस प्रकार से अपने जीवन को ले चलता है। मेरे प्रियो, अय्यूब की पुस्तक और मेरे मैं जो पुस्तक है उसका जीवन है मेरे और आपको कुछ विषयों को सिखाती है। पिछली बार भी मैंने आपसे शेयर किया था, सबसे पहली बात हमें परमेश्वर को देखना, परमेश्वर क्या है, परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर कैसा है। और जब संडे की आराधना खत्म हुई, एक बच्ची मेरे पास आई, आज शायद उस दिन आई थी वो, और कहने लगी कि अंकल बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भगवान ये है, इतने सब परमेश्वर है, परमेश्वर आखिर क्या कौन है, वो कैसे हम जान सकते हैं। मैंने उसको छोटा सा एक उदाहरण दिया, मैंने बेटी एक बात बताओ, जब तुम बाजार में जाती हो एक गेहूं लेने के लिए, तुम क्या करती हो, जाके गेहूं ऐसे उठा लाती हो, लेकिन तुम्हारे दिमाग में एक गेहूं के बारे में यह है कि गेहूं मुझे लेना है, तो 10 गेहूं प्रकार के दुकान में गेहूं है, आप उठाते हैं, देखते हैं, शायद मुंह में डालते हैं, और आपको मालूम है अगर मैं मुंह में डालूंगी तो उसको अगर कच्चा होगा खराब होगा तो फट से कट जाएगा या मजबूत होगा, आप कुछ उसके गुणों को देखते हैं, या कपड़े लेने को जानते हैं तो आपके दिमाग में पहले से उनके कुछ गुण है, ऐसे आंख बंद करके उठाने रहते हैं, और आपके अंदर कोई चीज परख है, जिस परख को करके आप जो भी चीज खरीदना चाहते हैं उसको खरीदते हैं। जब हम परमेश्वर के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे अंदर भी उस परख को होना चाहिए जो हम परमेश्वर के बारे में देखना चाहते हैं, और तब वो परख क्या है कि परमेश्वर के गुण क्या है, परमेश्वर की योग्यता क्या, कैसा परमेश्वर होना चाहिए। क्या परमेश्वर छली, धोखेबाज, झूठ, अन्याय करने वाला, अनर्थ? नहीं, परमेश्वर पवित्र है, और यही पूरी अय्यूब में वो परमेश्वर को देख रहा, मेरा परमेश्वर चाहे मैं किसी परिस्थिति में होकर जा रहा हूं, कठिनाइयों में जा रहा हूं, संघर्ष में जा रहा हूं, मेरी परख हो रही है, मेरे दुर्बलता आ रही है, मेरी पत्नी ने इनकार कर दिया है, बच्चे खत्म हो गए हैं, नौकर चाकर चले गए हैं, धन संपत्ति चली गई है, सब कुछ यहां तक मेरे मित्रों ने छोड़ दिया है, मैं अकेला रह गया हूं, मेरे पास कोई नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूं मेरा परमेश्वर कैसा है, और इसलिए वो कहता है मुझे निश्चय है कि मेरा परमेश्वर जीवित है और अंत में वो मुझे छुड़ाएगा और मुझे पृथ्वी पर खड़ा करेगा। ये उसका भरोसा है, ये कॉन्फिडेंस है। और मैं प्रियो, मैं बार बार इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि मेरे और आपको केवल क्रिश्चियनिटी को या मसीहत को बाहर से नहीं देखना है, कुछ चीजों को नहीं देखना, आपको प्रभु यीशु मसीह को देखना है, उसके गुणों को देखना है, उसकी विशेषताओं को देखना है, उसकी महानता को देखना है, उसकी पवित्रता को देखना है, उसके बलिदान को देखना है, उसके त्याग को देखना है। वही तो उसके प्रेम का रहस्य है, वही तो उसके जीवन का रहस्य है। और मैं और आप कितने अधिक सौभाग्यशाली हैं कि परमेश्वर ने मेरे और आप पर अनुग्रह किया है, जबकि हम पाप पे सड़ रहे थे, मर रहे थे, हमारे लिए कोई आशा नहीं थी, ऐसे समय पे उसने पहले होकर मुझसे और आपसे प्रेम किया और प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बनकर पृथ्वी पर आ गए, मारे गए, गाड़े गए और जी उठे, ताकि उस पर विश्वास करने द्वारा मैं और आप उस परमेश्वर को जान सके, उससे जीवन पा सके जो अनंत जीवन है। ऐसा अद्भुत परमेश्वर, ऐसा अद्भुत परमेश्वर। और अय्यूब की पुस्तक इसी बात पर जोर देती है कि हम उस अद्वैत परमेश्वर को जाने। जितना अधिक हम परमेश्वर को जानते हैं तब हमारा रिस्पांस परमेश्वर के प्रति होता क्या होता है वो हम समझते हैं। और आज पिछले संडे को मैंने केवल 2 संडे आपके साथ अय्यूब की पुस्तक लिया है, पिछले संडे हमने देखा था परमेश्वर कैसा है, कौन है। आज देखना चाहेंगे, क्योंकि अय्यूब ने इस बात को देख लिया मेरा परमेश्वर ऐसा है, इसलिए अय्यूब का रिस्पांस क्या है परमेश्वर के प्रति, अय्यूब का प्रतिउत्तर परमेश्वर के प्रति क्या है, यह आज हम देखना चाहेंगे। पिछले संडे हमने 33 अध्याय से आगे बढ़ के देखा था, आज हम पहले आरंभिक अध्याय से कुछ देखना चाहेंगे। और जब हम इस बात को देखते हैं, मेरी
लालसा अभिलाषा प्रार्थना यह है कि काश जब आज हम यहां से बाहर निकल कर जाएं, हम कह सके परमेश्वर धन्यवाद हो, आप मेरे ऐसे अद्भुत परमेश्वर हैं, अब मैंने जान लिया है कि हर परिस्थिति में मैं आपके प्रति इस प्रकार से अपने प्रत्युत्तर दूंगा और रिस्पॉन्स दूंगा। संसार बदल रहा है, हाँ है मचा हुआ है, हाँ हाँ कार मचा हुआ है, कितनी सारी चीजें परिस्थितियां बदल रही हैं, लोग रो रहे हैं, लेकिन सारी परिस्थितियों में यद्यपि चाहे मेरे व्यक्तिगत जीवन में, चाहे मेरे पारिवारिक जीवन में, चाहे मेरे नौकरी के जीवन में, चाहे सामाजिक जीवन में कठिनाइयां आ सकती हैं, समस्या आ सकती हैं, दुख आ सकता है, बीमारी आ सकती है, लेकिन मेरा रिस्पॉन्स, मेरी प्रत्युत्तर परमेश्वर प्रति ये है क्योंकि मेरा परमेश्वर ऐसा है, क्योंकि मेरा परमेश्वर ऐसा है। So, आइए मेरे साथ निकालिए। सबसे पहली बात, मैंने आपसे बताया था पिछली बार उसके तीन मित्र थे, मित्र सलाह देने आए और काउंसलिंग की बहुत जरूरत पड़ती है, लेकिन तीनों मित्रों की सलाहें यद्यपि पढ़ते समय ऐसे लग रही है कि बहुत सुंदर सलाह दे रहे हैं, लेकिन जब आप गहराई में जाते हैं तो आप उनके बारे में देखेंगे, दूसरे अध्याय के आखिर में जाएंगे तो आपको मालूम चलेगा, जब उनको मालूम चला उसके मित्रों को कि अय्यूब के साथ ऐसी दशा हुई है, वो आए और आकर उसको संतावना देना चाहते थे, उसके साथ बैठ गए और 7 दिन तक बैठे रहे और उनको समझ में नहीं आया कि हम क्या कहें, समझ में नहीं आया कि क्या कहें, और तब बाद में उन्होंने बोलना शुरू करा, और तब क्या हो रहा है, वो अपने आप को बहुत धर्मी दिखा रहे हैं लेकिन अय्यूब को कह रहे हैं, अय्यूब तेरे ऊपर ये ऐसी चीज इसलिए आई है कि तू पापी है, तूने ये किया है, तूने वो किया है, तू अगर ऐसा करता तो ऐसा ना होता, तू अगर ऐसा करता तो ऐसा ना, ये सब कुछ कर रहे हैं। परमेश्वर अय्यूब को जानता है, परमेश्वर अय्यूब के सलाहकारों को जानता है, परमेश्वर सब कुछ परिस्थिति को जानता है, और इसीलिए पिछली बार हमने देखा था कि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, परमेश्वर सब कुछ जानता है, वो न्यायी परमेश्वर है। और जब हम इस बात को देखते हुए आगे बढ़ते हैं तब हम सबसे पहले देखना चाहते हैं, मेरे साथ निकालिए अय्यूब उसका पहला अध्याय। हम इस पद को बार बार स्मरण करते हैं, कोट करते हैं, लेकिन क्या कह रहा है पद, तब अय्यूब 20 से 22 जोब चैप्टर 1 verses 20-22 तब अय्यूब ने उठकर अपना वस्त्र फाड़ा और सिर मुड़ाया और भूमि पर गिरकर आराधना की। क्या करी उसने? आराधना की। उसने कहा, मैं अपनी मां के गर्भ से नंगा निकला और नंगा ही चला जाऊंगा, यहोवा ने दिया और यहोवा ने ही लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। इन बातों के पश्चात बातों में अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर अन्याय का दोष लगाया। क्या मतलब है, क्या कह रहा है? वो कह रहा है, मैं हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा। उसने आराधना की। मैं हर परिस्थिति में, चाहे दुख आए, बीमारी आए, मृत्यु आए, कठिनाई आए, कुछ भी क्यों ना आए, मैं हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा। अगर आप हबक्कूक की पुस्तक का अध्ययन करें, 3 अध्याय उसमें, तो हबक्कूक भी इसी तरह की स्थिति में जाता है, लेकिन बाद में जब वो शोक से उसका भी उसकी पुस्तक आरंभ होती है, आनंद से समाप्त होती है। अय्यूब का भी है, शोक से आरंभ होती है, आनंद से समाप्त होती है। और जब उसने इस बात को देखा तो हबक्कूक क्या कहता है, चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल लगे ना लगे, चाहे उसमें फल लेना लगे, भेड़ सालों में बच्चे हो ही ना हो, लेकिन हर परिस्थिति में मैं परमेश्वर में आनंदित और मगन रहूंगा। मेरे प्रियो, सरल नहीं है, सरल नहीं है, व्यवहारिक जीवन में सरल नहीं है। हम मनुष्य हैं और हम कई बार निर्बल हो जाते हैं। परमेश्वर जानता है अय्यूब को, परमेश्वर उसकी निर्बलता को जानता है, परमेश्वर उसकी दुर्बलता को जानता है। परमेश्वर अय्यूब भी मेरे और समान, आपके समान मनुष्य था, लेकिन उन सारी बातों में वो कह रहा है, मैं उससे परमेश्वर की आराधना की और कहना चाह रहा है कि मैं हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा। और फिलिपियों 4 अध्याय में वही कहता है, किसी भी बात की चिंता ना करो, लेकिन प्रत्येक परिस्थिति में, प्रत्येक बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो। फिलिपियों का 4 अध्याय 6 पद, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय 18 में कहता है, प्रत्येक परिस्थिति में कुछ भी क्यों ना हो, उसमें परमेश्वर का धन्यवाद करो क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की यही इच्छा है, यही इच्छा है। क्या हो रहा है? अय्यूब इस ऐसी परिस्थिति में भी परमेश्वर की इच्छा में होकर जीवन को व्यतीत कर रहा है। ये उनको पिछले संडे एक भाई मुझसे प्रश्न कर रहे थे और वो पूरी आराधना में केवल एक बात को लेकर सोचते रहे, बाकी संदेश वो खो गए कि अय्यूब ने तो परमेश्वर का इनकार किया, परमेश्वर से ऐसा कहा, उसने अपने जन्म को धिक्कार जाना था। तब मैंने उसको समझाया और इसीलिए मैंने इसे ये पिता बेटे और डॉगी का आपको उदाहरण दिया, उसको थोड़ा सा पिक्चर में रखिए। समझने की कोशिश करिए मेरे प्रियो, जब प्रभु हमारे जीवन में आते हैं, ये सच है, बिना परमेश्वर के, जब मैं टीवी में या कहीं और परिस्थिति में मैं देखता हूं किसी की मृत्यु आती है, कैसे सीना पार पार के ताप धार के रोते हैं। एक विश्वासी कभी ऐसे नहीं रोता, दुख होएगा, दुख होगा, लेकिन वो छाती हाय 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 करके कभी नहीं रोएगा। ये गलत है। क्यों? उनके पास आशा नहीं है, उनके पास परमेश्वर नहीं है, लेकिन हमारे पास परमेश्वर है, वो हमारे जीवन वास करता है, हर एक कठिनाई में, हर एक परिस्थिति में, हमारे जीवन में, आपके जीवन में बहुत सारे अनुभव आए होंगे, हमारे जीवन में, परिवार जीवन में बहुत सारे ऐसे अनुभव है। परमेश्वर हमें लेकर गया, परमेश्वर हमें सिखाया, परमेश्वर हमें दिखाया, परमेश्वर हमें संभाला, परमेश्वर हमारे साथ रहा, लेकिन उन परिस्थिति में हमने सीख लिया परमेश्वर हमारा कैसा परमेश्वर है, वो हमसे क्या चाहता है। मैं हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा। दूसरी बात, दूसरा अध्याय उसके 10 पद है, दूसरा अध्याय। परंतु उसने उससे कहा, आप जानते हैं कि उसकी पत्नी ने क्या कहा, उसने क्या कहा, तू तो ऐसा है, ये सब कुछ है, ठीक है, तू अकेला मार, तू परमेश्वर को धिक्कार कर, तू ये कर वो कर, परमेश्वर की निंदा कर, ये परमेश्वर के साथ ऐसा करा है। उससे कहा नहीं, मैं परमेश्वर का निंदा नहीं करूंगा। और तब परमेश्वर कहता, वो कहता है अपनी पत्नी से, मूर्ख स्त्री के समान बातें करती है, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? इन सब बातों में अय्यूब ने अपने होठों से कोई पाप नहीं किया। प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल, जो संपन्नता का सुसमाचार है, वो हमें उल्टा सिखाता है। यीशु पर विश्वास कर लो, कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा, कोई संकट नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा। बाइबल नहीं सिखाती, गलत प्रचार है, गलत शिक्षा है, झूठी शिक्षा है। बीमारी आ सकती है, कठिनाई आ सकती है, दुख आ सकता है, घटी आ सकती है, परिवार में मृत्यु हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। मैं लखनऊ में एक पास्टर को जानता हूं, जब लखनऊ में कई वर्ष पहले वो आए, मैं उस समय बेदल चर्च में था, प्रभु ने हमारी मदद करी कि उन पास्टर्स को हमने स्टैब्लिश किया। उनके पास 2 बेटे हुए और छोटे बेटे को मैंने समर्पण भी किया उसका। धीरे धीरे उनकी सेवा स्टैब्लिश हो गई, फिर इंडिपेंडेंट आज एक चर्च चला रहे हैं और पास्टर हैं। और उनके यहां मीटिंग थी, 3 दिन की अच्छी कन्वेंशन थी, कन्वेंशन हुई और सब लोग आए, बहुत अच्छा सब कुछ हुआ। और उनके चर्च के ऊपर हॉल उन्होंने छोटा बना रखा था, उसी कमरे में मीटिंग हो रही थी और माइक ऐसे लगा हुआ था। और ये पास्टर अपने गेस्ट स्पीकर को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट चले गए और ये बच्चा किसी दिन खेलता खालता उस हॉल में चला गया और उसने उसको छुआ, नहीं मालूम किस प्रकार से माइक में करंट लगा उस बच्चे को और बच्चे की मृत्यु हो गई। बच्चे मृत्यु हो गया। जब वापस आए तो देखा ऐसी घटना। मेरे प्रियो, दुख की घड़ी थी, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं सेवक के लिए। सड़क के किनारे उनका घर है राजाजपुरम में। उन्होंने दूसरे दिन, कोई दुख था लेकिन कोई भी इस प्रकार का हल्ला गुल्ला रोला विलाप ये सब कुछ नहीं, लेकिन उसी बात में जब बच्चे को ले जाना था, हम लोग भी गए 12 बंकी में थे, हम जब ले जाना था, उन्होंने वहीं सामने सड़क पर, पूरे अन्य जाति लोग थे चारों तरफ आस पास के लोग, अल्लाह पहुंच गया, प्रभु की साक्षी दी, वचन प्रचार किया, प्रभु का धन्यवाद किया। अंदर एक बेटे को खो दिया उन्होंने, उसकी पीड़ा कम नहीं थी, लेकिन ऐसी परिस्थिति में शांति देने वाला संभालने वाला कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर ने। और उन्होंने उस समय उस प्रकार से वचन दिया, अपनी साक्षी दी, उस बेटे के बारे में बताया। बहुत अच्छा म्यूजिशियन बन गया था, 7-8 साल का था वो। मेरे प्रियो, हम परिस्थिति को नहीं जानते, हम स्थिति को नहीं जानते। किसी के सामने भी कभी भी कुछ भी आ सकता है। संसार दूसरी तरह से लेता है, हाय तावा मनाता है, लेकिन अगर हम परमेश्वर के हैं तो परमेश्वर हमारे लिए किसी बात में भी बुराई को उत्पन्न नहीं करता। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। पौलुस जेल खाने में, बंदी गृह में घोड़े मारे गए 5 बार 39 घोड़े। जब प्रभु यीशु मसीह को कोड़े मारे गए थे, वो कोड़े सरल नहीं थे, आज इस तरह के नहीं थे। उसमें हड्डी के ऐसे वो लगे रहते थे और चमड़े से लिपटे रहते थे। जब मारे आते थे तो वो खाल खींच लेते थे और खून निकल जाता था। प्रभु यीशु मसीह ने मारे से थे। पौलुस ने भी साफ, समुद्र से फेंक दिया गया, भूखे रहना पड़ा, लोगों ने गांव से घर से निकाल दिया, सब कुछ हुआ। लेकिन कहता है, वो कहता है अपने परमेश्वर के वचन में, लिखते हुए रोमियों उसके 8 अध्याय में 35-36 पद में, कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या मृत्यु, क्या जोखिम, क्या अकाल, क्या भूकंप, क्या बीमारी, कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? मेरे प्रियो, अय्यूब ने इस बात को जान लिया था कि जो कुछ मेरे जीवन में परमेश्वर आने दे रहा है मैं उसे स्वीकार करूंगा। दूसरी बात, जो कुछ परमेश्वर मेरे जीवन में आने दे रहा है मैं उसको स्वीकार करूंगा। वो अपनी पत्नी से कहता है, हे मूर्ख स्त्री, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने होठों से कोई पाप नहीं किया। वो जान रहा है कि सब कुछ को संभालने वाला, नियंत्रित करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर, उसकी आंखें ऐसे समय में परमेश्वर की ओर उठ रही हैं। और मेरे प्रियो, अगर हमें अपने विश्वास की दौड़ में आगे बढ़ना है तो हम अपने निशाने की ओर, जो यीशु मसीह हमारा निशाना है, उसकी ओर अपनी आंखों को लगा के हमें बढ़ते जाना है। पौलुस किस, मैंने साक्षी दी, हम बहुत सारे लोगों को जीवन पाते हैं, हम अपने देश के लोग पाते हैं। कितने हमारे देश में ऐसे लोग हुए हैं जिनकी साक्षियों को हम सुनते हैं। ब्रदर भक्त सिंह की साक्षी को आप पढ़िए और सुनिए। जब विश्वास किया था पंजाब से, वो पंजाब के रहने वाले थे, पढ़ाई करने बाहर गए थे, वहां विश्वास किया, जब पंजाब में घर में आए उनको निकाल दिया गया। उनकी पत्नी ने कहा, तुमने विश्वास किया, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी। पत्नी ने भी छोड़ दिया। लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई थी हैदराबाद में, आज तक रिकॉर्ड है पूरे भारत में इतने लोग ने, पूरा हैदराबाद शांत हो गया था उनकी जीवनी को पढ़कर देखिए। और तब उनका भाई आया, उनके फ्यूनरल में शामिल होने आया। उनके भाई ने कहा, हमने तो उसे अपने घर से निकाल दिया था, लेकिन इसको पूरी दुनिया ने अपने हाथों हाथ उठाया है। हमारा परमेश्वर अद्भुत है, हमारा परमेश्वर अद्भुत है। कितना अधिक हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, कितना अधिक हम परमेश्वर पर निर्भर होते हैं, कितना अधिक हम परमेश्वर को पहचानते हैं, कितना अधिक हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, कितना अधिक हम परमेश्वर के साथ और अधिक लिपट कर जीवन को व्यतीत करने तैयार हैं। तीसरी बात है अय्यूब के जीवन में, 6 अध्याय उसका 24 पद, मुझे समझाओ और मैं चुप रहूंगा, मुझे बताओ मैंने क्या गलती की है, मैं सुधार के लिए तैयार हूं, मेरे जीवन में अपने सुधार के लिए तैयार हूं। तीसरी बात वो कहने को तैयार होता है, मैंने क्या गलती की है। मैंने बार बार इस बात को कहा, वो संघर्ष में है, बार बार उथल पुथल उसके जीवन में हो रहा है। डीप डाउन उसका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ टूटा नहीं है। मनुष्य होने के नाते हलचल है, ओ समुद्र की लहरें ऊपर नीचे हो रही हैं। जब आप किसी समुद्र के किनारे, नदी किनारे एक पत्थर फेंकते हैं तो फेंकेंगे तो आपको बहरें बनती हुई दिखाई देंगी, लेकिन डीप डाउन में क्या है? असली परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हमें नदी के समान शांति देता है। मेरे प्रियो, वो कह रहा है मैं सुधार के तैयार हूं। दाऊद अपने जीवन के अनुभव में कहता है, भजन संहिता 119 उसके 67 पद में, भजन 27:19 उसके 71 में कहता है कि विपत्ति के आने से पहले मैं भटक गया था, भला हुआ ये दुख मेरे ऊपर आया जिससे मैंने तेरी व्यवस्था का पालन करना सीखा। और कई बार ये कष्ट, ये दुख, ये समस्याएं हमें परमेश्वर की निकटता में और लाते हैं, और निकटता में लाते हैं। जब मसीह जीवन में साधन रीति चलते हैं तो हम आनंद से चलते आते हैं। कई बार आपने देखा कि किसी रास्ते से आप जा रहे हैं, आराम से चलते चले आ रहे हैं, लेकिन अगर एक पत्थर में ठोकर लग गई तब दोबारा उस रास्ते से आप जाएंगे, थोड़ा सचेत रहेंगे, आज मुझे यहां से ठोकर लगी थी, दोबारा तो कुछ नहीं है, सचेत हो जाएंगे। परमेश्वर कई बार इन परिस्थितियों के द्वारा, इसीलिए मैंने कहा था परीक्षाएं हमें नाश करती हैं, परख हमें आगे बढ़ाती हैं। और वो अय्यूब ने कहा भी, जब परमेश्वर मुझे परख लेगा मैं सोने के समान, वो सोना जो 7 बार ताया गया उसके समान मैं शुद्ध निकलूंगा। मेरे प्रियो, जरूर जब कोई ऐसी परिस्थिति आती है हमें परमेश्वर के पास आना है, उससे पूछना है, उससे बात करनी है, अपने आप को देखना है, बाप को यह उसका अंगीकार करना है, कोई दुर्बलता है उसको मांग लेना है, कहीं शिथिलता आ रही है, कहीं ढीलापन आ रहा है, कहीं सुस्ती आ रही है, कहीं आलस आ रहा है, कहीं और संसारिक चीजें हमें धीरे धीरे अपनी ओर खींचते चले आ रही है, हमें सावधान और चौंक जाना है और तब परमेश्वर पास आना है। ये परमेश्वर, और वो कहता है मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। इब्रानियों का लेखक कहता है सब प्रकार की जो ताड़ना है वो कुछ समय के लिए दुखदायी होती है। इब्रानियों का लेखक उसका 12:11 में, सब प्रकार की ताड़ना जो है वो कुछ समय के लिए दुखदायी होती है और बाद में वो उसका प्रतिफल उत्तम होता है। हम मनुष्य होने के नाते हमारा ध्यान परमेश्वर से हटकर संसार की ओर ज्यादा चला जाता है, परिस्थिति की ओर ज्यादा चला जाते हैं, जो हम स्थिति में चले उसकी ओर ज्यादा चला जाता है, हम उन सारी ओर चला देते हैं और तब हम परमेश्वर को देखना या परमेश्वर प्रभु जी तू क्यों ये दुख मेरे पर आया, क्यों आया? हम रोने तो लगते हैं लेकिन प्रभु आप इसमें क्या सिखाना चाह रहे हैं? सबसे पहली बात, हमारे हृदय में विलाप नहीं, हमारे हृदय में धन्यवाद और आराधना होनी है। इसीलिए अय्यूब की पुस्तक 1 अध्याय आराधना से आरंभ होती है। उसने परमेश्वर की आराधना की, उसने परमेश्वर की आराधना की किसी परिस्थिति में। चौथी बात, अय्यूब 7 अध्याय उसका 17 अध्याय, मनुष्य क्या है कि तू उसे महत्व दे और उस पर अपना मन लगाए और प्रति भोर उसकी सुधि ले और प्रति पल उसको जांचता रहे। मनुष्य क्या है कि उस पर मन लाया है? मनुष्य क्या, हम क्या हैं? हम तो धूल हैं, हम मिट्टी हैं। इसीलिए अय्यूब की पुस्तक में जब पढ़ते हैं तो मनुष्य की तुलना कीड़े से, नाली कीड़े के समान, घुर पड़े होने के समान, इतने अलग अलग रीति से करता है। कहता है कि मैं क्या हूं, मैं तुच्छ हूं, निकृष्ट हूं, हम क्या थे? जब तक हम परमेश्वर से अलग थे हम पाप में पड़े हुए सड़ रहे थे। हमने अपने धर्म कर्म की कोशिश करने द्वारा, उन प्रयासों के द्वारा अपने आप को बहुत अधिक धर्मी बनाना चाहा था लेकिन हमें धार्मिकता नहीं मिल पा रही थी, हम असफल हो रहे थे, हम तो ऐसे। लेकिन परमेश्वर जो दया का धनी है उसने मेरे और आप पर दृष्टि कर दी। हम क्या थे? हम कुछ नहीं थे, हम कीड़े धूल में पड़े हुए थे, तुच्छ थे, निकृष्ट थे, लेकिन प्रभु आपका धन्यवाद हो क्योंकि आपने सृजा है, आपने बनाया है, आपके दृष्टि में अपने आप, आपने हमें अपने में बहुमूल्य समझा है, इसलिए आपने अपनी दया में होकर मुझे बचा लिया है, इसलिए आप मेरे लिए संसार में आ गए। मैं तो पाप में नाश हो रहा था और पाप के कारण मुझ पर दंड की आज्ञा लग चुकी थी और वो दंड की आज्ञा अनंत काल की मृत्यु थी, जहां पर हमेशा हमेशा रोना और दांत का पीसना था, जहां पर हमेशा हमेशा की यातना और पीड़ा थी, वहां से प्रभु आपने मुझे निकाल लिया, उस पीड़ा को आपने क्रूस पर रहकर सह लिया, उस निंदा को आपने सह लिया, मुझ जैसे व्यक्ति के लिए, तुच्छ और निकृष्ट व्यक्ति के लिए आपने पहले होकर प्रेम करके उस क्रूस पर सह लिया, ताकि मैं आप पर विश्वास करने द्वारा आपको अपने जीवन के अपने जीवन में आपको स्वीकार करने द्वारा, आपको अपने जीवन में अपनाने के द्वारा मैं उस पीड़ा से बच जाऊं, मैं उस दंड से बच जाऊं, मैं उस अपराध के जो जो दंड ठहराया गया था उससे बच जाऊं, मृत्यु से बच जाऊं और मुझे आप अपने साथ अनंत राज में ले लें। मनुष्य क्या है परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रतिभोर को उसकी करुणा मेरे और आपके लिए नहीं होती है। प्रतिभोर को करुणा होती है। जब हम सुबह उठते हैं कई बार हम रात में सो दाएं और बाएं का होश नहीं रहता, इतनी गहरी नींद। अगर परमेश्वर रक्षा ना करे, यदि प्रभु यदि यहोवा घर की रक्षा ना करे तो उसके पैरों का जागना व्यर्थ होगा। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर। इसीलिए वो आराधना महिमा धन्यवाद स्तुति प्रशंसा की हो गया। मेरे प्रियो, हमने गलती नहीं करी उसके पीछे चलने के कारण, हमारे जीवन में कोई गलत निर्णय नहीं लिया गया है, हमने एक भला कार्य उसकी दया और अनुग्रह में होकर किया है और हमें आनंद के साथ उसमें आगे बढ़ते रहना है। दुनिया कुछ भी समझे, दुनिया में तुच्छ समझती है, दुनिया में मूर्ख समझती है, लेकिन परमेश्वर ने अभी हमें अपने हाथों में ले लिया है। परमेश्वर ने मैं सो कहता है कि मैं सचमुच में कह रहा है मैं परमेश्वर के सम्मान के योग्य तो नहीं हूं, फिर भी उसने मुझे संभाला, यद्यपि मैं उसके सम्मान के योग्य नहीं हूं, मैं तुच्छ हूं निकृष्ट हूं, फिर भी उसे संभाला है। ओ मेरे प्रियो, जब यूहन्ना सेवा मैं आगे बढ़ा और प्रभु यीशु मसीह को आते हुए उसने देखा, उसने क्या कहा, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। और तब आगे चलते चलते लोग कुछ कुछ कहने लगे, तो यूहन्ना ने कहा मैं तो इसकी जूती के बंक के खोलने के लायक भी नहीं हूं। पौलुस अपने जीवन के बारे में कहता है ओ और परमेश्वर पापियों को बचाने के लिए और सबसे बड़ा पापी मैं हूं, जो व्यवस्था का ज्ञानी था, जो धार्मिकता के लिए धर्म के काम के लिए अपने आप को न्यौछार करने के लिए तैयार था, उसका जोश और होश सब कुछ व्यवस्था को पालन करने के दीवाना बनाओ था। आज वो क्या कहता है, उसने अपनी स्थिति को देख लिया, अपने आप को देख लिया। मेरे प्रियो, जब मैं अपने आप को देखता हूं और उस महान परमेश्वर को देखता हूं तो मैं केवल दंडवत कर सकता हूं, केवल मैं झुक सकता हूं और कुछ नहीं कर सकता। महान परमेश्वर अय्यूब कहता है मैं तो इस योग्य नहीं था, सम्मान के योग्य नहीं था, लेकिन उसने मुझे अपने हाथों में लिया। पांचवी बात, अय्यूब उसका 9 अध्याय और उसका 15 पद, 9 अध्याय उसके 15 पद, चाहे मैं निर्दोष भी होता फिर भी मैं उसे उत्तर नहीं दे पाता, मुझे अपने न्याय से दया की ही भीख मांगनी पड़ती हो। चाहे मैं निर्दोष भी होता, क्या कहना चाह रहा, मैं निर्दोष नहीं हूं, मैं निर्दोष नहीं हूं, कहीं ना कहीं चाहे यद्यपि मैं अपने बारे में बोल रहा हूं कि मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं प्रश्न पूछूंगा, मैं ये सब कुछ करूंगा, मैं अपना बचाव कर रहा या लोग मुझे कुछ कह रहे हैं, लेकिन अगर मैं निर्दोष भी होता तब भी मैं उससे उत्तर नहीं दे पाता और मुझे अपने न्याय से, कौन न्याय है, वो परमेश्वर जो मेरा न्याय है, उस न्याय परमेश्वर से दया ही की भीख मांगनी पड़ती, हे प्रभु तू मुझ पर दया कर, हे प्रभु तू मुझ पर दया कर, हे प्रभु तू मुझ पर दया कर। ऐसा परमेश्वर क्या कहना चाह रहा है, मैं हमेशा हमेशा चाहे जैसी परिस्थिति में रहूं मैं सदैव उसकी दया की आशा लगाए रहूंगा। वो ये कहना चाह रहा है, मैं चाहे जैसी परिस्थिति में क्यों ना हूं मैं सदैव उसकी दया की आशा लगाए रहूंगा। मेरे प्रियो, मैंने आपसे बताया विलाप गीत 30 अध्याय बहुत सुंदर पद है, प्रतिभोर को करो उसकी करुणा, विलाप गीत उसका 3 अध्याय उसका 21-22 पद, प्रतिभोर को उसकी करुणा मेरी नहीं होती है, हम मर नहीं मिटे, ये परमेश्वर की करुणा का प्रतिफल है, हम मर नहीं मिटे। एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक मिनट, एक एक सब कुछ क्षण जो मिलता है उसकी दया और उसके कारणों में हमको मिलता है। हमारा परमेश्वर दयावान परमेश्वर है। छठी बात जल्दी से कह रहा 23वां अध्याय उसके 10 और 12 पर जो अभी हमने पढ़ा था,
वो मुख्य इसका पद है, लेकिन फिर भी 23 अध्याय 10 से 12।
परंतु वो मेरा चाल चलन जानता है, परंतु वो मेरा चाल चलन जानता है, जब वो मुझे परख चुकेगा मैं सोने के समान निकलूंगा, मेरे पैर उसके पद पर स्थिर रहे हैं, मैं उसी के मार्ग पर बिना मुड़े चलता आया हूं, मैं उसके होठों की आज्ञा से हटा नहीं हूं, मैंने उसके वचन मुंह के वचनों को अपने दैनिक भोजन से भी अधिक बहुमूल्य जाना है। क्या कहना चाह रहा है? मैं सदा सर्वदा उसी पर निर्भर रहा हूं। आई एम ऑलवेज डिपेंडेंट अपॉन हिम। मैं हमेशा घर में, फिर से मैं कहना चाह रहा हूं, बार बार वही चीज आ रही है, क्योंकि जो पूरे अय्यूब की पुस्तक के 42वें अध्याय के अंदर हम तस्वीर देखते हैं, वो वही तस्वीर है। शैतान आया है, शैतान ने कहा ये अगर तुझसे प्रेम करता है तो केवल इसलिए प्रेम करता है कि तूने उससे आशीषित किया है, आशीष दिए, ये दिया, ये दिया, ये दिया। उस समय की आशीष केवल बहुत ही आशीष थी, केवल धन संपत्ति, गाय बैल ऊंट। उस समय जिनके पास ज्यादा गधे होते थे वो बहुत धनवान मांगे जाते थे, ऊंट होते थे, गधे होते थे, खच्चर होते थे, क्योंकि उन्हीं में सामान ढोके ले जाया जाता था, उन्हीं में सामान। उस समय बैलगाड़ी और जहाज और ये सब कुछ अभी नहीं बने थे, लेकिन जिनके उनके पास वो होते थे वही धनी माने जाते थे। और तब वो कह रहा, कुछ भी हो, चाहे मेरे पास कुछ भी धन संपत्ति रहे या ना रहे, परिस्थिति मेरी ओर हो या ना हो, चाहे कैसी स्थिति हो, चाहे मुझे सुख मिले चाहे मुझे दुख मिले, चाहे मैं विजय हो रहा हूं चाहे मैं परास्त हो रहा हूं, संसार की दृष्टि से सारी परिस्थिति में मैं उस पर निर्भर रहूंगा। क्यों? क्योंकि वो मेरा सृष्टि करता है, वो रचने वाला है, क्योंकि वो मेरा सच्चा न्यायी परमेश्वर है, क्योंकि वो मुझे संभालने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो भला परमेश्वर है। अय्यूब एक जगह और कहता है, वो ही इज ए यूनिक गॉड, वो अद्वितीय परमेश्वर है। अय्यूब एक जगह और इस बात को कहता है। मेरे प्रियो, मैं और आप परमेश्वर कैसे देखते हैं? मैं और आप परमेश्वर कैसे देखते हैं? हमारे विश्वास की बढ़ोतरी कुछ बातों करने के द्वारा नहीं है, हमारी विश्वास की बढ़ोतरी, और जितना अधिक हम परमेश्वर को देखते जाते हैं उतना अधिक हम संसार की चीजों को छोड़ते चले जाते हैं। क्यों नहीं हम संसार की चीज छोड़ने पाते? बहुत सारी चीजें, उसमें भी चलना चाहते हैं, उसमें भी चलना चाहते, उसमें भी चलना चाहते, उसमें चलना, थोड़ी देर परमेश्वर देखा, थोड़ी देर संसार को, थोड़ी देर परमेश्वर, थोड़ी देर, क्योंकि शायद हमारी आंखों से अभी भी उन पर्दों को हटना है, उन छिलकों को गिरना है, जिन छिलकों ने अभी हमारी आंखों को ओझल बना रखा है कि जो परमेश्वर है और जैसा उसे देखना चाहिए, जैसा उसको समझना चाहिए, हमने पूर्णता उसको देखा नहीं, उसको समझा नहीं है। और जैसे जैसे पर्दे गिरते चले जाते हैं, क्या कारण था? पौलुस अपने आप को बहुत धर्मी समझता था, लेकिन जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उसको दर्शन दिया, उसकी आंखों के छिलके गिर गए। 3 दिन बाद जब उसने अपनी आंख खोली, उसे सब कुछ उसके लिए नया बन गया। संसार वही था, संसार में तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन उसका मस्तिष्क, उसके सोच, उसके विचार, उसका विश्वास, उसकी भावनाएं, उसकी इच्छा अब परिवर्तित हो चुकी थी। इसीलिए वो आगे कहता है, दूसरे क्रंथियों उसके 5वें अध्याय उसके 10वें पद में 5:17 में कहता है कि जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, देखो पुरानी बातें बीत गई और वे सब नहीं होंगी, अब वो नई सृष्टि बन गया। सो यहां अय्यूब कह रहा है, मैं हर स्थिति में सदैव उस पर निर्भर रहूंगा। मेरे प्रियो, मुझे और आप पर, जब मैं परमेश्वर पर निर्भर रहता हूं, वो मेरे विश्वास को बढ़ाती है, वो मेरे चरित्र का निर्माण करती है, वो मुझे झूठ छल धोखे इन सारी चीजों से अलग करती है, मेरे चरित्र का निर्माण करती है। परमेश्वर पर निर्भर होना विश्वास के निर्माण का होना होता है, और जितना अधिक विश्वास का निर्माण होता है उतना अधिक मेरे चरित्र का निर्माण होता है, उतना अधिक चरित्र का निर्माण होता है, और वो चरित्र
फिर उत्तम फलों को उत्पन्न करता है। ये क्रम है। अंतिम बात चैप्टर 28 पहले 12 पद, परंतु बुद्धि कहां से मिल सकती है और समझ का स्थान कहां है। 20 पद कुछ छोड़ छोड़ के मैं पढ़ाऊं, पूरा बुद्धि के बारे में है। तो फिर बुद्धि कहां से आती है और समझ का स्थान कहां है। 23 पद, परमेश्वर इसका मार्ग समझता है और वो इसका स्थान जानता है। 28 पद, मनुष्य से कहा, देख प्रभु का भय मानना ये बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है। मैं सच्ची बुद्धि परमेश्वर से प्राप्त करूंगा, मैं सच्ची बुद्धि परमेश्वर से प्राप्त करूंगा। मुझे बुद्धि कहां से मिलेगी, मुझे सच्ची बुद्धि अपने परमेश्वर से प्राप्त होगी, वो बुद्धि जो मेरे जीवन की यात्रा में मेरी अगुवाई करेगी, वो बुद्धि जो मुझे सत्य मार्ग पे आगे बढ़ने में मदद करेगी, सहायता करेगी। इसीलिए परमेश्वर के वचन में दाऊद कहता है भजन 32 उसके 8 32:8 पद में, मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा, तुम्हें समझ दूंगा, तुम पर कृपा दृष्टि बनाए रखूंगा और जिस मार्ग में चलना है उसमें तुम्हारी अगुवाई करूंगा। लेकिन जैसे ही 19 पद पे आप जाते हैं, जैसे उस आगे पद में जाते हैं 9 पद पे 32:8-9 जैसे 9 पद में जाते, घोड़े और कछरों के समान ना बनना। 32:8 में कहता है मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा, तुम्हें सम्मति दूंगा, जिस मार्ग पर तुम पर कृपा दृष्टि बनाए रखूंगा और जिस मार्ग में चलना है तुम्हारी अगुवाई करूंगा, ये कहता है। लेकिन मैं घोड़े और खच्चरों के समान मत बनना। मेरे प्रियो, मुझे और आपको इस संसार में चलने के लिए परमेश्वर की बुद्धि की आवश्यकता है। अदन की वाटिका में जब पाप आया तो शैतान ने यही कहा था कि तुम खाओगे तुम्हारी आंख खुल जाएंगी, तुम बुद्धिमान हो जाओगे, और जैसे उन्होंने खाया उनकी बुद्धि खुलने की जगह बुद्धिमान हो जाए भ्रष्ट हो गई। लेकिन पुनः जब हम प्रभु यीशु मसीह में जीवन प्राप्त करते हैं, परमेश्वर हमें उस बुद्धि की आशीष को देता है, और जितना अधिक हम प्रभु के साथ बनते चले आते हैं, चलते चले आते हैं, वो हमें प्रतिदिन इन संघर्षों के जीवन में, इन परख के जीवन में, इन परीक्षाओं के जीवन में, इन यातना सतावने के जीवन में, इन घटी और कमी के जीवन में, इन समस्याओं के जीवन में परमेश्वर हमें बुद्धि प्रदान करता जाता है। कथन कुछ भी हो ठीक है, मेरे ये मित्र जो सलाहकार हैं, वो तीनों सलाहकार, उनके लिए जो वचन में शब्द इस्तेमाल किया गया है, वो कहा है ये निकम्मे वैद हैं, ये निकम्मे संतावना देने वाले हैं, ये व्यर्थ की बात करने वाले, इन तीनों के लिए ये शब्द आए हैं, सलाहकार बनकर आए थे। लेकिन 33 अध्याय से हम एक दूसरे सलाहकार को देते हैं जो आयु में छोटा था, लेकिन उन्होंने बहुत सुंदर बातें कर लिया, और यही कारण हुआ कि परमेश्वर ने किस प्रकार से बाद में अय्यूब को इस्तेमाल किया, अय्यूब को इस्तेमाल किया, और इन्हीं तीनों के लिए बाद में अय्यूब ने बलिदान चढ़ाकर इनके इन्होंने बलिदान चढ़ाया और इनके लिए प्रार्थना की, उनके पाप अपराध क्षमा हुए, क्योंकि उस पूरे समय में ये अय्यूब को बाहरी समझ रहे, लेकिन अय्यूब के जीवन की अंदर के संबंध जो परमेश्वर के साथ था वो नहीं समझने पा रहे थे। और 42 अध्याय में जरूर अय्यूब पश्चाताप करता है, कुछ बातों के लिए वो देखता है, और विश्वासी को प्रभु में आने के बाद भी अपने जीवन में पश्चाताप की जरूरत पड़ती है। जो प्रतिदिन हमसे त्रुटियां होती हैं, जो प्रतिदिन हमसे गलतियां होती हैं, प्रतिदिन हमारे अंदर भ्रम या संदेह या कुछ और उत्पन्न होता है, भय उत्पन्न, कुछ भी ऐसा उत्पन्न होता है, हमें उसके लिए परमेश्वर से क्षमा मांगनी होती है, पश्चाताप करने की जरूरत होती है। एक पश्चाताप परमेश्वर के जीवन के साथ संबंध जोड़ता है, और उस संबंध में नाते में हम उसकी संतान बनकर के अनंत काल के वारिस होते हैं, वो हमारी हमेशा हमेशा के लिए हमारा एक रिश्ता बन जाता है। लेकिन एक पश्चाताप जो निरंतर उसकी संगति में बने रहने के लिए हमें करना पड़ता है। संबंध बन गया, संगति हमारी कई बार हमारे कार्य के द्वारा टूट जाती है, लेकिन जब हम प्रभु से पश्चाताप करते हैं, क्षमा मांगते हैं, पुनः हमारी सहभागिता उसके साथ बन जाती है। और अय्यूब ने ऐसे ही किया, अय्यूब ने ऐसे किया। और तब हम उसके बाद देखते हैं अय्यूब को परमेश्वर ने कैसी आशीष दी, दुगनी आशीष दी। सबके लिए लिखा है परमेश्वर ने दुगना 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 दे दिया, लेकिन एक के बारे में नहीं लिखा, उसकी पत्नी के बारे में नहीं लिखा। पत्नी कहां चली गई थी? उसके बेटे और बेटियां तो स्वर्ग पहुंच गए थे मरने के बाद, लेकिन अब उसके बाद उतने बेटे बेटियों को परमेश्वर ने दे दिया उसको, तो दुगने हो गए। ना केवल पशु पक्षी कुछ है, लेकिन पत्नी संभवता एक ही थी, शायद फिर के आ गई थी। तो मत कहिएगा कि अय्यूब के पास को भी दुगनी पत्नी दी थी, पर परमेश्वर आशीष का देने वाला है। लेकिन सबसे बढ़ करके, सबसे बड़ी आशीष अय्यूब के लिए क्या थी? सबसे बड़ी आशीष अय्यूब के लिए ये संपत्ति नहीं थी, ये धन दौलत नहीं थी, ये सब कुछ वापस मिलना नहीं था, लेकिन सबसे बड़ी आशीष उसका परमेश्वर उसके साथ है और अय्यूब उसके साथ बना हुआ है। ये सबसे बड़ी आशीष। मेरे प्रियो, मेरे और आपके जीवन में सबसे बड़ी आशीष, मेरा परमेश्वर मेरा है और मैं उसका हूं। मेरा परमेश्वर मेरा है और मैं उसका हूं। जब श्रेष्ठ गीत की पुस्तक में आते हैं, ये विचार वहां पर मिलते हैं। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें कि हम सच में उस परमेश्वर को देख सकें जो अय्यूब का परमेश्वर, काश वो मेरा और आपका व्यवहारिक परमेश्वर बन जाए और हम उसकी आराधना कर सकें किसी भी परिस्थिति में, किसी भी उसमें, किसी उसमें। क्षमा कीजिएगा, मैं एक प्रैक्टिकल उदाहरण दे रहा हूं, माफ कीजिएगा, अपने घर के साक्षी है, माफ कीजिएगा। हर्षित भैया बैठे हैं, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने उनको सेवा में बुलाया, सेवा कर रहे हैं। 8 और 9 साल की शायद आयु में थे। एक ऊपर छत पर, पड़ोस में छत में दुमंजली में क्रिकेट खेल रहे थे, और क्रिकेट खेलते खेलते बॉल पकड़ने के लिए उछरे और रेलिंग पार करके नीचे आ गए, रेलिंग पार के करके आ गए। ये हमारे जीवन का अनुभव है, बहुत सारे अनुभव दिए। और हम दोनों जन कहीं विजिट करने जाने वाला थे, लेकिन उस समय रुक गए और एक भाई उनको हार के लेकर आया, हाथ में उठा के लेकर आया। खून बह रहा था और दीवाल उस पर रेलिंग के बाद भी तार निकले हुए थे, छड़ी निकली हुई थी, पत्थर पड़े थे, बहुत अजीब जगह थी। तो जैसे ही किसी ने कहा भैया हर्षित भैया गिर गए, हर्षित भैया गिर गए, मैं बाहर निकला, हमने देखा वो भाई लेकर आया, हमने हाथ में लिया, घुटने के बल हुए, हमने प्रभु इस बेटे को आपने दिया है, आप इसको जीवन देने वाले हैं। और घुटने के बलों का पहले परमेश्वर के हाथों में सौंपा, धन्यवाद आप हमारे सच्चे परमेश्वर, जीत परमेश्वर, आप इसको संभाले। उसको होश था और हम उसको लेके चले गए, अस्पताल ले गए, हल्ला मच गया, लोगों ने सहायता करी, परमेश्वर धन्यवाद, बहुत लोगों ने मदद करी जब तक हम हॉस्पिटल पहुंचते वहां से। लेकिन परमेश्वर ने अद्भुत काम किया, भयंकर परिस्थिति। आंटी जब नहीं चिल्लाई, रो रही, रोज जैसे लोग पड़ोस में रोज आते ना, हाय मेरा बेटा ये, वो नहीं चिल्लाई, तो एक पड़ोस से स्त्री आई, उसने कहा देखो तो रो ही नहीं रही है, चिल्लाई नहीं रही है, दुख तो था, अरे ये ऐसा कैसी मां है, ये तो रो ही नहीं रही है, चिल्लाई नहीं रही है, क्योंकि वो अपेक्षा ही कर रहे थे न जाती कि शायद इतना बेटा इनका गिर गया, वो फूड़ फूड़ के दहाड़ के रोएंगे, ऐसा होगा, सब कुछ होगा, छत ऊपर उड़ जाएगी। शांति देने वाला परमेश्वर था, शांति देने वाला परमेश्वर था। मेरे प्रभु, मेरे प्रियो, प्रभु अपने वचन को सिखाने के लिए, मजबूत करने के लिए कई बार हमें ऐसे अनुभव से लेके चलता है कि ना केवल हम प्रचार वचन को पढ़ें, सीखें, प्रचार करें, लेकिन उसको अपने जीवन में भी अनुभव करें। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, आपने भी ऐसे कई अपने जीवन में अनुभव किए होंगे। पर मेरे प्रियो, मैं केवल एक कहना चाहता हूं, अय्यूब की पुस्तक केवल मुझे और आपको सिखाती है कि अय्यूब का परमेश्वर सच्चा, न्यायी, धर्मी, पवित्र, अद्भुत परमेश्वर, वही परमेश्वर मेरा और आपका परमेश्वर है। जिसने अय्यूब को संभाला, वो मुझे और आपको भी संभालेगा। इसलिए हमारे विश्वास पर असर नहीं आना चाहिए, हर परिस्थिति में हमें उस पर रहना चाहिए। प्रभु से प्रार्थना करनी है, प्रभु मेरे विश्वास का अपने मान कीजिए, मैं आप पर निर्भर हो सकूं। ऐसी संसार की परिस्थिति बदलती जा रही है, कई बार प्रभु ग्रहण करने के कारण परिवार में विरोध होता है, कई सारी चीजें होती है, निकाल दिए आते हैं, बहुत कुछ होता है ऐसी स्थिति में भी।
प्रभु आप मेरे साथ हैं, क्योंकि आप मेरे वही परमेश्वर हैं जो आप अय्यूब के परमेश्वर थे।